जिसकी उत्थान का के कलश में कहा गया था कि उपासना करने योग्य तो एक भगवान आत्मा ही है, चाहे इस साध भाव से उपासना करो चाहे इस साधक भाव से उपासना करो। साधक भाव माने चौथे गुणस्थान से लेकर के अरहंत भगवान तक, और साध भाव माने सिद्ध भगवान। मन सिद्ध भगवान भी किसी की उपासना करते हैं, वे उपासक हैं। वे हमारे और आपके बगल में बैठे हैं। उपास तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। 16वीं गाथा में कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। इसकी चर्चा अपन ने की दो दिन में विस्तार से। आज मैं 16वीं गाथा की टीका पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही मार्मिक है संक्षेप में कि यह आत्मा जिस भाव से साध्य या साधन हो उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को समझाते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने योग्य है, सदा उपासना करने योग्य है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही हैं, आत्मा की ही पर्याय हैं, अन्य वस्तु नहीं। तो क्या बात करें कि मन में तो ऐसा नक्की करे क्या कि एक आत्मा ही उपादेय है, उपासना करने योग्य है, और समझाए तो ऐसा बोले कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करे। ऐसा नहीं लगता है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग? बात तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसा हम समझें हम वैसा ही समझाएं। इसमें मन में तो ऐसा निर्णय करे कि एक उपासना करने योग्य तो निज भगवान आत्मा ही है, और समझाए तो ऐसा समझाए कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। फिर लिखा अंत में कि आखिर दर्शन ज्ञान चारित्र भी तो आत्मा की ही पर्याय हैं, इसलिए वेद भी तो आत्मा ही है, इसलिए आत्मा का सेवन करो और दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, ये दोनों एक ही बातें हैं। और उदाहरण दिया कि जैसे देवदत्त का दर्शन ज्ञान चारित्र देवदत्त से अलग नहीं है। ये देवदत्त कौन है? हमारे शास्त्रों में कुछ नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, वो वास्तव में कोई है नहीं, जो नाम ही नाम है। हो भी सकते देवदत्त और देवदत्ता, जिन दत्त जिन दत्ता, कोई यार देवता की आराधना से मिला तो हम बोलते हैं ना देवदत्त। तो अगर देवदत्त मां नाम का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति का सिद्धांत और उस व्यक्ति का ज्ञान उस देवदत्त से जुड़े हैं क्या? नहीं है। ऐसे ही आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान क्या आत्मा से जुड़े हैं या नहीं है? तो इसलिए चाहे हम आत्मा की उपासना की बात करें चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना की बात करें, बात तो एक ही है। उत्तम गंजी देव साधु की तो बातें नहीं करते। यह आत्मा की उपासना है, दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना क्यों? अष्ट पावर में दो गाथाएं आती हैं मोक्ष पावर में, जिसका पद्यानुवाद अपन ने कुंड कुंड शतक में भी संकलित किया है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश्वरी पंड, आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप, समय भाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो ये बात, जब एक आत्मा ही शरण है तो दर्शन ज्ञान चार्य को सेवन करने की बात क्यों कहते हैं, और सोचे कुछ और कहे कुछ, कि भाई दो बातें नहीं है। सोच के तो हम कोई बात निर्णय कर सकते हैं ना, और कहने में श्रोताओं की अपेक्षा होती है। समझ भाई, घर में भाव चलता है माँ बाप का और भाषा चलती है बच्चों की। जब कोई आदमी अपने बेटे से कहता है कि मम्मी को बुलाना, तो किसी भी बेटे ने आज तक ये नहीं पूछा कि मेरी मम्मी को कि तेरी मम्मी को, क्यों? और जब वो कहता है मम्मी को बुलाना, तो वो समझ जाता है ना कि ये मेरी मम्मी की बात है, वो तो पिताजी तो पत्नी है, कोई ऐसा नहीं कहता पत्नी को बुलाना। तो भाषा तो बालकों की तरफ से चलती है और भाव चलता है घर वालों का, दादा को बुलाना, दादी को बुलाना, मामा को बुलाना, क्यों? वो ये नहीं कहता मेरे साले को बुलाना, वो ये नहीं कहता माँ बहन के मेरे भाई को बुलाना, क्या बोलते है? एक गिलास पानी लाओ बेटा मामा के लिए। माने भाषा बच्चे की तरफ से, बच्चे के रिश्ते में जो व्यक्ति जो पढ़ता है उस रिश्ते से बात की जाती है। ऐसे ही जिनवाणी में समझाने की प्रक्रिया श्रोताओं की तरफ से अपनाई जाती है, और जो समझाना है वो भाव वक्ता का होता है। क्योंकि यदि श्रोताओं की भाषा का ध्यान नहीं रखेंगे तो बात समझ में आएगी कैसे श्रोताओं को, और समझ में नहीं आई तो समझाने का मतलब क्या? कि आत्मा की उपासना करो, अब इतनी कह दी क्यों, तो क्या करेगा? बोलिए क्या करें, आत्मा की उपासना कैसे करें, उसमें समझ में कुछ नहीं आता। तो वो ये कहते हैं कि आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, तो कुछ समझ में आता है। इसलिए कहते हैं कि चाहे ऐसा कहें कि आत्मा को जान, आत्मा की उपासना करो, और चाहे एक देखो जानो कहें, ज्ञान दर्शन चारित्र कहें, तो दोनों एक ही बातें हैं। इसलिए ये मत समझना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। अंदर में उसने वही समझा और बाहर से भी बात उसी को समझाई, लेकिन वो श्रोताओं की तरफ से समझाई। अब किसी की समझ में इतने में भी नहीं आए तो कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, इसमें दिक्कत ये है उत्तम जी कि हमने जिस चीज को दर्शन मान रखा है, जिस चीज को ज्ञान मान रखा है, और जिस चित्र को चारित्र मान रखा है, खासकर चारित्र के मामले में, ये जो सारा बाहर का क्रियाकांड है, ये जो अमृत महामृत रूप स्वभाव है, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इनकी उपासना करो, माने ये करो, क्यों? इसलिए ये समझाना भी बहुत जरूरी हो गया कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। क्या मतलब? ये जड़ की क्रिया नहीं है, ये राग की क्रिया नहीं है, ये आत्मा की ही निर्मल अवस्थाएं हैं। माने जो करने के लिए कह रहे हैं वो कोई शरीर की क्रिया करने की बात नहीं कह रहे, क्या? कि दर्शन करो, कि हमने तो साहब एक एक तीर्थ के तीन तीन दफे दर्शन करे, हमारे दर्शन ऐसे होते हैं। और रोज ही ना हम द्रोणगिरी की यात्रा करके आते हैं ऊपर, कि सुबह से शाम तक जतीश भाई आपको इतना बड़ा कार्यक्रम देते हैं और आप कब कर जाते हो, आपको पता नहीं जब आपका प्रयोजन होता है तब। दर्शन करना, हमने ऐसे दर्शन मान रखा है, हम तो इसको जानना मानते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, हम तो इसको धर्म चरित्र मान रखा है। तो कहते हैं भैया उस आत्मा का दर्शन करो, और दर्शन करो माने उसे जानो। ये दर्शन माने ये सिद्धा गुण वाला दर्शन नहीं, ये दर्शन गुण वाला दर्शन, उसे जानो, उसे पहचानो और उसी में जम जाओ रम जाओ। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मुक्ति मार्ग, मुक्ति का मार्ग है ना, अपने बड़े शास्त्र में लिखा है, सबसे बड़े शास्त्र में महाशास्त्र तत्वार सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राणी मुक्ति मार्ग। अब सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चरित्र क्या है, अब ये इसमें झगड़ा खड़ा हो जाता है। समय सार में कहा कि आत्मा को जानो, समय सार में कहा आत्मा को जानो तो सम्यक ज्ञान हो गया ना। आत्मा को मानो माने यही मैं हूं, ऐसे मानने का नाम है आत्मा को मानना, तो सम्यक दर्शन रूप उपासना हो गई। और आत्मा का ही ध्यान करें ये सम्यक चरित्र रूप उपासना हो गई। तो कहते नित्य आत्मा की उपासना करो तो काम दो नहीं करने हैं, काम एक ही होना है। पर्याय की तरफ से कहेंगे तो दर्शन ज्ञान चरित्र, और स्वभाव की तरफ से कहेंगे तो आत्मा। अथवा जो वो क्रिया होगी ना, जैसे मैं एक बात कहता हूं आहार दान, तो एक दाता है, एक लेने वाला है, एक मुनिराज आहार लेते हैं, एक श्रावक देता है, तो आहार की क्रिया तो एक ही है। जब दातार से की तरफ से बोलेंगे तो देना, आहार दान बोलेंगे, और जब महाराज की तरफ से बोलेंगे तो आहार लेना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलिए। के दो काम होने वाले हैं, क्रिया तो एक ही करना है, एक ही क्रिया के दो नाम हैं, एक देने वाले की तरफ से और एक लेने वाले की तरफ से। और अकेला आहार बोले तो वो सामग्री जो ली दी जा रही है। ऐसे ही कहते भैया दो काम नहीं करना है, एक ही काम करना है। कभी माताओं बहनों से कहता हूं, एक दादी अम्मा बहुत खुशी खुशी जल्दी जल्दी जा रही थी, मैंने क्या हुआ इतनी खुशी आज क्यों है, कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पोता हुआ है। मैंने कहा तुम्हें पोता हुआ है, कि हाँ। तो मैंने कहा कि अस्पताल में ले तो जाके, बाजार में क्यों डोल रही हो, कि क्यों अस्पताल में ले तू, मुझे क्या हुआ, पोता क्या क्या बोला, होता तो एक ही बच्चा है सिर्फ मां के, क्यों, लेकिन उसी को पोता हुआ, भांजा हुआ, भतीजा हुआ, क्यों, और ना मालूम कितने कितने नाम आप दे सकते हो। बोलो अलग अलग हुए, वहां सब समझ लेते चुपचाप, हमें नहीं कहते दादी अम्मा से अस्पताल में ले दो, वो कहती मेरे पोता हुआ है। तो होना तो एक आत्मा का दर्शन है, एक जिसका दर्शन होना है उसकी तरफ से बात, और एक जो वो हुआ दर्शन वो उसकी तरफ से बात। अभी बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, हुआ एक दिन का है, तो क्यों दादी को बुलाओ, दादा को बुलाओ, अम्मा को, कल तक तो ये दादा दादी थे नहीं, आज दादा दादी कैसे बन गए, उत्तम से नहीं, तुम नहीं बने ना अभी, अरे हम तो बहुत दिनों के बने हैं, और धीरे धीरे सारे ही देश के दादा बन गए, लेकिन वो दादा बन गए वो बंबई वाले दादा नहीं। अब तो वो जो नाम है दादा का उसकी जगह नया नाम आ गया है भाई। पहले तो हरेक को बोलते थे अमित भाई, बाबू भाई, अब बोलते बोलते ना भाई का ऐसा आदेश है। 25 लाख रुपया वहां इस वक्त पहुंच जाने चाहिए। क्यों? किसने कहा? भाई ने कहा। जितने परम पवित्र शब्द होते हैं उन सब की दुर्दशा आखिरकार ऐसी ही हो जाती है। क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि काम तो एक होना है, अपने आत्मा का दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये भी तीन कह रहे। भाई साहब तीन कहां हैं? मैंने कल कहा था शायद कि ध्यान और ज्ञान में क्या पता है, क्या अंतर है। तो एक समय पहले किसी चीज को जानना उसका नाम है ज्ञान, और लगातार जानते रहना उसका नाम है ध्यान। तो ये दोनों क्रिया कार्य में करनी पड़ेंगी। वो तो ज्ञान में ही क्रिया होगी ना, एक क्रिया तो ज्ञान में होगी ना। ये चैत क्रिया को भी ज्ञान क्रिया कहते हैं। वो चैत होंगी पर्याय है, फिर वो करते रहना आप। लेकिन जो तुम्हें करना है वो क्या करना है? तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुने क्या ध्यान से सुनो। तो जिसे हमने जाना नहीं है उसका कभी ज्ञान संभव नहीं है, और जिसे देखा नहीं है उसका कभी स्मरण संभव नहीं है, है ना? जाने बिना ज्ञान, देखे बिना स्मरण। जब आप एक उदाहरण लेता हूं कि आप सब बैठ के आंख बंद करके एक मिनट सब अपने अपने पिताजी की चेहरे को देखने की कोशिश करें, बंद करके खोल के नहीं। क्यों? दिख गए? ऐसे लोग इस जगत में बहुत हैं कि जिनके माँ बाप अभी विद्यमान हैं, वे तो दिख ही जाएंगे। लेकिन मेरे जैसे अभागे लोग भी तो हैं कि जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्हें उनके पिताजी दिखाई देते हैं कि नहीं? बोलो। मैं आप सबसे पूछता हूं कि अभी एक मिनट बाबू भाई को देखो। बोलो। जब अमर भाई ने बाबू भाई का नाम लिया तो सबके तेरे दिमाग में जिनने उन्हें देखा था वो बाबू भाई ख्याल में आ गए कि नहीं आ गए? आते कि नहीं आते? बोलो। और जिनने नहीं देखा उनकी क्या हालत हुई होगी? क्यों नहीं बाबू भाई, समझे ना? तो मैं अब ये कहता हूं अपने पिताजी का, हमें मैंने आंख बंद की तो मेरे पिताजी दिख गए। अब जरा एक प्रयोग और करें, अच्छी तरह आंख बंद कर लें और अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखो जरा। वो तो नहीं दिखते? आप लोग कोशिश करो, नहीं दिखते? कैसे दिखेंगे? हमने उन्हें देखा ही नहीं है, ख्याल नहीं? तो ध्यान करो, ध्यान करो। कि ध्यान कैसे करें? पहले ज्ञान हुआ हो तो ध्यान करें ना। तो भगवान आत्मा को देखा हो, जाना हो, तो उसका ध्यान हो सकता है। अगर देखा जाना है ही नहीं और हम उसका ध्यान करने बैठ जाते हैं तो उसका ध्यान होगा? बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी आपने कहा था ध्यान करो, हमने बहुत कोशिश की, विपश्यना भी हमने अटेंड करी, परीक्षा भी अटेंड करी, क्यों? और भी छोटी छोटी जगह ध्यान मंदिर खुल गए हैं, लेकिन हमें तो कभी आत्मा अंदर में दिखाई दिया ही नहीं। क्यों? और अंदर में आंख बंद करके देखने जाते हैं तो और सारी दुनिया का चक्कर काट के आ जाते हैं, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देता। बाल बच्चे दिखाई देते हैं, पत्नी देती है, बंबई कलकत्ता रहते थे, अमेरिका देख के आए तो अमेरिका दिखाई देता है। क्यों? आत्मा दिखाई नहीं देता। क्यों? जो जो चीजें तूने पहले कभी देखी हैं आंख बंद करने के बाद देरी दिखाई देती है ना, फिर प्रयोग करके देखना तो इसमें से एक सिद्धांत निकला कि जो तुमने पहले देखी है जानी है वे दिखाई देंगी टेंशनी कि दूसरी तो आत्मा को देखो जानो तो आत्मा का ध्यान में वो दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना हो वे अपने आत्मा को जाने। इसके आगे आने वाली जो दो गाथाएं हैं सत्रहवीं और अठारहवीं गाथा उनमें इसी बात को उदाहरण से समझाया है। उदाहरण कैसा दिया है कि कोई धनार्थी पुरुष धन का इच्छुक पुरुष जैसे राजा की सेवा करता है राजा को पहचानता है राजा का ज्ञान करता है ये विश्वास करता है कि राजा की सेवा करने से मुझे पैसा मिलेगा और फिर राजा की सेवा करता है तो उसे अवश्य गारंटी से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यदि तुम्हें अनंत सुख चाहिए तो जीव रूपी राजा को जानो जीव रूपी राजा को देखो उसकी पहचान करो ये जानो कि इसमें के ही आश्रय से धर्म होगा और उसमें ही अब जम जाओ रम जाओ तो तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये वो राजाओं के जमाने का काम था इसलिए उन्होंने राजा का उदाहरण दिया। आज का जमाना होता तो कहते उद्योगपतियों को जानो क्यों तो वो जमाने के हिसाब से बदलता रहता है। तो वो यहां पर विस्तार से समझाते हैं तो उस क्रियाकांड की तरफ नहीं ले जाते क्यों कि साहब हमें आप ध्यान करने की विधि बताओ ना कि बता रहे हैं ना ये क्या बता रहे हैं कि ध्यान करने की विधि तो है कि तुम आत्मा के स्वरूप को जानो और आत्मा के स्वरूप को जान कर तुम्हें अब ऐसा लगेगा यही मैं हूं तो फिर तुम्हें ध्यान करना नहीं पड़ेगा फिर ध्यान होगा। जिसका हमें परिचय प्राप्त होता है जिसे हम जानते हैं जिसे हमें अपनापन स्थापित हो जाता है उसका ध्यान करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। कभी कभी तो ध्यान न आए इसकी कोशिश करनी पड़ती है। मैं इसलिए एक उदाहरण देता हूं तो साधारण सा है। दो लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते थे पहले दोनों की साइकिलें टकराई फिर आंखें टकराई हैं फिर एक दूसरे के बारे में जिज्ञासा जागृत हुई कि कौन है तो पता चला फलां सेठ की लड़की है फलां सेठ का लड़का है कौन सी क्लास में पढ़ता है क्या होता है। हमने पहले देखा जाना फिर जिज्ञासा पैदा हुई तो गहराई से उसका परिचय प्राप्त किया परिचय प्राप्त किया तो रुचि जागृत हुई क्यों और रुचि जागृत हुई तो अपनापन आने लग गया और दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से और नहीं तो बिना विवाह ही रह जाएंगे। लेकिन इतने हिम्मत वाले नहीं थे कि माँ बाप से ये बात कह सकें। देखो भाई साहब दुनिया में कोई भी काम होता है जिसकी जो विधि है वही आत्मा के ध्यान की है। अरे आत्मा से कभी टकराओ आत्मा को जानो कभी आंखें टकराओ कभी देखो कभी पढ़ो कभी सुनो क्यों उसका परिचय प्राप्त करो उसकी गहराई में जाओ कहाँ का है कैसे क्या है तो फिर उस तक पहुंच जाओगे। मैं तो इस देह को छोड़ने के पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा का दर्शन अवश्य करूंगा तो तुम्हें दर्शन अवश्य होगा कल में ना। अब अपने माँ बाप से उनने कहा नहीं कहने की हिम्मत पड़ी नहीं इतना अभी हवा तो लगी थी जमान नए जमाने की लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लगी थी क्या लेकिन उनके लक्षणों को देखकर उनके माँ बाप को पता चल गया कि मामला क्या है क्या तो लड़के के पिता ने अपने बेटे को बोला सुनना ध्यान से जरा बात कि बेटा हमने तुम्हारी शादी करने का नक्की किया क्यों अब ये तो वो कह नहीं सकता लड़की मैंने देख रखी है
कि नहीं 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 बाबू जी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, पांच साल तक मेरी शादी नहीं, पांच साल तक पूरी बात तो सुन ले। हमने एक लड़की देखी है कि नहीं नहीं बाबू जी अभी नहीं अभी नहीं। मैंने कह दिया ना पांच साल पहले बात मत करना अहमद भाई, कि पूरी बात तो सुन ले, फला सेठ की फला लड़की हमने तेरे लिए देखी और चुनी है, तू भी जाके देख आ। तो उसी लड़की का नाम लिया जिससे वो प्यार करता। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कल्पना करो आप कि बाबू जी जैसी आपकी आज्ञा, एक मिनट में मामला पलट गया, पांच साल ना मालूम कहां गायब हो गए। कि बेटा तू देख या कि मुझे क्या देखना, मैं क्या जानू देख के, आप अनुभवी आपने देख ली तो मैंने ही देखी। ठीक है ठीक है, हम आठ दिन बाद तेरी सगाई की तारीख नक्की करते हैं और छह महीने बाद शादी होगी। क्यों, कि तुम्हारी मई में परीक्षाएं हैं, जनवरी का किस्सा था, जून में दोनों मई में निपट जाएंगी, जून में शादी। ठीक है ठीक है, जो आप भी आगे जैसा आप समझे होते, कि कुछ इतने ही पहले सुन पूरी बात, कितनी जल्दी करता है। इन छह महीने के बीच में हमारे टेलीफोन का बिल नहीं बढ़ना चाहिए। इन छह महीने तक तुम एक दूसरे के घर का चक्कर नहीं काटोगे। बोलो ठीक है पापा, ठीक है। एक शर्त और है, इस छह महीने तक एक दूसरे से बात नहीं करोगे, चिट्ठी पत्री नहीं लिखोगे। कि ठीक है, कि एक शर्त और है। कि कितनी शर्तें आएंगी, तो फाइनल बस एक शर्त और है। क्या, कि इन छह महीने तक तुम एक दूसरे का ध्यान नहीं करोगे, एक दूसरे के बारे में सोचोगे नहीं। बोले पापा बहुत हो गया, अब हम ये तुम्हारी नहीं मानेंगे। क्यों, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, जिसमें हमारा अपनापन आ गया, जिससे परिचय हो गया, अब उससे हम बोले नहीं, वाणी पे तो कंट्रोल कर लेंगे, पत्र नहीं लिखेंगे ये भी कर लेंगे, एक दूसरे के घर के चक्कर नहीं काटे ये भी कर लेंगे, टेलीफोन नहीं करें ये भी कर लेंगे, लेकिन मन में उसके बारे में सोचे नहीं, उसका ध्यान नहीं आए, ये हमारे बस की बात नहीं है। बोलो, अब तो हमें उसका ध्यान नहीं आए इसकी कोशिश करनी पड़ेगी, ध्यान आए इसकी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। किताब खोल के देखेंगे तो वहां फोटो तो बना होगा तुलसीदास जी का और देखेगा ऐसे ही जिन आत्मार्थी भाइयों को, जिन मुमुक्षु भाइयों को आत्मा का परिचय होता है, आत्मा का प्रेम होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का दर्शन होता है, उन्हें आत्मा का ध्यान करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनके तो सहज भाव से ही आत्मा का ध्यान होता है। तो आचार्य कहते हैं ये विधि है सम्मान संज्ञान चार्ज प्राप्त करने की, हम ये कह रहे हैं इसका सेवन करो। इस सत्रहवीं अठारहवीं गाथा है, उसकी टीका में एक बहुत गजब की बात लिखी, जो गाथा में तो कहीं नजर नहीं आती है। क्या उसमें लिखा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल के अनुभव में हमेशा आ रहा है। क्या कह रहे, आवाल गोपाल समझते हो, बालक, बाल माने होता है बालक,
और गोपाल माने होता है भगवान। आप जानते हैं गोपाल अपने बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को गोपाल बोलते हैं ना, तो आबाल गोपाल माने बालक से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर भगवान तक, अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, निगोदिया से लेकर मोक्ष तक, सभी के ये भगवान आत्मा के दर्शन प्रति समय हो रहे हैं। हरेक को, हरेक के ज्ञान में भगवान आत्मा प्रति समय आ रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। कितनी गजब की बात लिखी, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में नित्य आ रहा है। और हमने इतने कोशिश करी आत्मा के दर्शन करने की और आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। अनुभव में आ ही रहा है तो दर्शन नहीं हुआ का अर्थ क्या? तो इतना सा बात लिखा कि यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति नहीं हुई, पर इतना सा अज्ञान है। नहीं है समझे? देखो कलकत्ता में विक्टोरिया गार्डन है और वहां एक 7 मंजिल की बिल्डिंग, 7 मंजिल की बिल्डिंग में 6वें माले पर एक लेखक रहता था और 4वें माले पर उसका एक अनुवादक, समझे ना? और वे दोनों सुबह विक्टोरिया गार्डन में घूमने जाते थे। लेखक लोग जब विदर्भ टाइप के होते हैं ना, किसी बातचीत नहीं करते हैं, बोलते नहीं, जनसंपर्क कम करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को मिलते थे। कभी रामा श्यामा तक नहीं होती थी और कभी हो जाए तो हो जाए ऐसी बिना परिचित जैसे आदमी से, वर्षों से एक दूसरे को देखते थे, जानते थे कि सुबह घूमने आते हैं, हमें रोजाना वहां मिलते हैं। इस जो प्रकाशक लोग होते हैं ना, तो लेखक की किताब का वो प्रकाशन वो करता था, तो लेखक को रॉयल्टी दे देते हैं, लेकिन किताब में लेखक का एड्रेस नहीं देते हैं, नाम तो देते हैं, नाम भी नकली, धनपत राय का प्रेमचंद, क्यों जो प्रेमचंद उपन्यासकार है ना, उनका असली नाम मालूम कैसे? धनपत राय का असली नाम भी नहीं लिखते हैं। क्यों? कि लोग उन तक पहुंच ना जाए। उन तक पहुंच गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। और वे लेखक भी नहीं चाहते कि हमारा नाम दे दें, क्योंकि लोग इतने मिलने आएंगे हमारी किताबें पढ़ पढ़ के, तब नई किताब कब लिखेंगे? इसलिए ऐसे नाम मिलते हैं आपको, नाम से कुछ दूसरे और उस नाम से लिखते हैं। तो यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गया क्या? हिंदुओं के देश में रहना है, मुसलमान की फिल्म कौन देखेगा? दिलीप कुमार बन गए। अब वो दोनों रोजाना एक दूसरे को मिलते थे और वो जो प्रकाशक था, उस लेखक की बंगला की किताबों का हिंदी अनुवाद 3रे मंजिल में रहने वाले आदमी से करवाता था और उसे पैसा दे देता था, 100 रुपये तेज, 50 रुपये तेज अनुवाद करने के, और वो किताब करके छापता था। वो देखता था मेरी ये किताब का अनुवाद हो गया है और खूब बक रहा है हिंदी में, और ये देखा एक गुजराती के इस लेखक का मैं अनुवाद कर रहा हूं, और दोनों रोजाना मिलते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये वो लेखक है जिसकी किताब का मैं अनुवाद करता हूं, और वो ये नहीं जानता था ये वो व्यक्ति है कि जिसकी किताब, जो मेरी किताब का अनुवाद करता है। तो बिल्कुल ऐसे रूखे रूखे रोजी में निकल जाते थे। अब किसी कारण से उन्हें ये पता चल जाए कि ये वो व्यक्ति है कि जिसकी किताब का मैंने अनुवाद किया है, कि ये व्यक्ति वो है कि जिस जो मेरी किताब का अनुवाद करता है, तो उनकी क्या हालत होगी? एक दूसरे से गले लिपट जाएंगे कि नहीं लिपटने? अरे भाई साहब, बरसों से हम देख रहे, अब मैं आपसे पूछता हूं, वे एक दूसरे को जानते थे कि नहीं जानते थे? हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। जब बहुत से लोग हमें मिलते हैं तो पूछते हैं, पंडित जी आप पहचाना? हाँ पहचान लिया, पहचान लिया। तो बताओ क्या नाम है?
پول کھل جاتی ہے کیوں؟ کہ وہ ہماری آنکھوں میں دیکھ کر یہ جان لیتا ہے کہ یہ مجھے پہچان نہیں پا رہا. کیوں؟ کہ وہ جاتا ہے پہچان لیں گے تو بہت گلگلیاں سوچتی, لیکن ایسے روکھے روکھے دیکھ رہے ہیں کیوں؟ پھر وہ کہتا ہے میں فلاں آدمی ہوں, آپ کے ساتھ فلانی کلاس میں پڑھتا تھا, اپن دونوں لنگوٹیا یار تھے, کیوں 25 سال بعد ملے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو, اسے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نام بھی جانتے ہیں, اس کا نام آج بھی سنا ہے, سمجھے نا, اور اس کا پریچے بھی ہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہی بول ہے. ابھی ابھی کی تازی گھٹنا میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں مدراس گیا تھا وہاں پرشن کرنے کے لیے, تو مندر میں سے درشن کر کے باہر نکلا, اتم دن بازار میں جا رہا تھا, ہیمچند جی ساتھ میں تھے میرے, ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا, ہاتھ جوڑ جوڑ دیا, سب ایک پرشن پوچھا, کیا پرشن بازار میں تم کون؟ آپ حکم چند جی ہیں نا, ڈاکٹر حکم چند بہادر ہیں نا؟ کہا ہاں ہاں بھائی, کیوں کیوں؟ میری سچوچ ہے نا؟ میں کہا ہاں ہاں, میں روزانہ صبح 6:20 پہ آپ کا پرچن سنتا ہوں, بالکل ویسا ہی لگتے ہیں جیسے آپ ہوں. میں نے کہا بھیا ہمارے یہاں ہی ہو رہے ہیں, آج دن سے ہو رہے ہیں ہمارے پرچن یہیں. میں ضرور آؤں گا, ضرور آؤں گا, ضرور, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس کو کتنی خوشی ہوئی اس وقت ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے, تو ایسا لگے کیا ہو گیا ہے. پتنجلی جی میرے کو ایسا لگا کہ لوگ کتنا پریم کرتے ہیں, کتنا وشواس واتسل بھاو رکھتے ہیں اپن سے, اپن کو پتا ہی نہیں, جن نے اپن کو کبھی دیکھا نہیں, جانا نہیں, ایسے دور سے. ایسے وہ ترکاری دروپ بھگوان آتما انوتی سوروپ ہر ایک کو گیان میں آ رہا ہے. صرف اتنی دیر ہے, کیا کتنی دیر ہے, یہ میں ہوں اتنا جاننا ہے, اتنے کے بنا سارا رائی کی اوٹ میں پہاڑ ہے. اجان اندھکار بہت بڑا نہیں ہے, بہت چھوٹا ہے. دیکھو ابھی کہیں تھوڑا سا کنیکشن لوز ہو جائے اور سارے پنڈال کی بجلی چلی جائے, کیوں تو معلوم کیا ہوا ہے؟ جو بھی دو تار تھے نا بجلی گھر کا سے جو یہاں لین آئی ہے, وہ جو دو تار جو وہاں جڑے تھے بے دور ہو گئے. کتنے 100 گز دور, 200 گز کتنے دور ہوئے ہیں؟ آرے بال کے برابر دور ہوئے ہیں. اور اس کا دشپرینام کتنا بھینکر ہے, بولیے, گھنا اندھیرا. اور وہ تار جڑ جائیں تو اجیلا ہی اجیلا. بس مجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی اتنے لسو جلانے کے لیے, ہر ایک کے پاس جائیں ٹیوب کے پاس اور ماتھے لگا کے جلائیں تو کب تک جل جائے گا؟ بس وہاں اتنا سا ہاتھ لگانا ہے کہ دھما دھم, بس اتنا. موکش مارگ اتنا دور ہے, سمت اتنا دور ہے کہ جو انوبھوتی سوروپ بھگوان آتما تمہارے انوبھو میں نت آ رہا ہے, ایج میں ہوں, ایسا جان ہوتے ہی سمے درشن ہو گیا, سمے جان ہو گیا, اور انت انبندی کے ساتھ چلی گئی تو سمے چل گیا. کتنا سرل ہے موکش مارگ, بھگوان بننے کی پرکریا کتنی آسان ہے, اور ہم نے کتنی کٹھن بنا رہی رکھی ہے اپنے اجیان کے کارن. بھگوان آتما کو جاننا نہیں ہے, جاننے میں تو وہ آ ہی رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس آتما کا سوہاگ سپر پرکاشک ہے. اپنے کو جاننا اور پر کو جاننا ایسا ہے. اور ہم نے مان لیا کہ انادیکال سے میں نے ساری دنیا کو جانا اور آتما کو نہیں جانا. کیوں جانا نہیں؟ میرے آتما جانی ہوئے تو کیا ہوئے؟ اب تو آتما جاننے کے لیے کیا کریں؟ کم آپ کے جے پور آ جائیں, کہاں چلے جائیں, سوندر چلے جائیں, دیولالی چلے جائیں, منگلائتن میں آ جائیں, کہاں؟ کم 10 دھام بن گئے اور بن جائیں گے, کہاں آ جائیں؟ بولو کہ بھیا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہی آتما ہے, تیرے جاننے میں آ رہا ہے. اتنا سا بات, اتنی سی بات ہے. व्यसन लब्धि में और क्या होता है? तो यही तो व्यसन लब्धि है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है, पर यही मैं हूं ऐसी उसे प्रतीति नहीं होती है, इसलिए अज्ञान है। और जिस दिन ऐसी प्रतीति हुई उसी दिन ज्ञान हो जाता है। पड़ोस में दो मित्र रहते थे, लंगोटिया यार, समझ लंगोटिया का मतलब समझ गया, और घने मित्र अखाड़े में दोनों लंगोटे लगा करके एक साथ पहलवानी की प्रैक्टिस करते थे, उन्हें बोलते हैं लंगोटिया यार। एक के बहुत सुंदर लड़का था, पढ़ा लिखा बढ़िया, दूसरे की बहुत सुंदर लड़की थी, पढ़ी लिखी, दोनों को अपनी लड़के लड़की की शादी की चिंता थी। क्यों आपस में बहुत सलाह मशवरा भी करते, कहते, बहुत खोजते, सारी दुनिया खोजी। तो उसने कहा भाई अपने दोस्त से कहा, दोस्त यार कोई लड़का तेरी निगाह में हो तो बताना, तू कहीं बहुत जाता रहता है बाहर। तो उसे लगा, उसने नहीं कहा कि हाँ हाँ बताऊंगा बताऊंगा, मेरे को भी इतनी लड़के की शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, कहने नहीं जरूर देखूंगा, जरूर देखूंगा। तो समझना ऐसी कई दफे बातचीत हुई, समझिए ना, दोनों को ना लड़का मिला ना लड़की मिली। एक दिन वो लड़का वाला बोला, उसके दिमाग में ना मालूम क्या हुआ, तो यार तू मेरे से बार बार कहता है, तू मेरे से बार बार कहता है कि लड़का बताना लड़का बताना, ठीक तेरी निगाह मेरे लड़के पर तो नहीं है क्या? तेरी निगाह मेरे लड़के पर तो नहीं है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे अपने बगल में इतना योग, इतना बढ़िया लड़का, इतना घर भर देखा हुआ सब, क्यों बोलो? अब मैं पूछता हूँ लड़का के, लड़की कहाँ फौज में जाना, फौज में कहाँ जाना, वो तो भगवान महावीर से पूछते इसकी शादी किसके साथ होगी, तो वे बता पाते कि नहीं बता पाते, बोलो? यानी नक्की तो पहले ही से था ना, और वे सारी दुनिया में खोज रहे थे। तो मैं पूछता हूँ कि अपनी बेटी का जो पति बनने वाला है उसे वो जानता था कि नहीं जानता था, बोलो? अपने घर में जो बहू बन के आने वाली है उसे वो जानता था कि नहीं जानता था? बस इतना ही नहीं था कि अरे भाई इनसे भी एक दफे बात करके देखूं। तो वो लड़के वाला कहता है एक दफे मेरे दिमाग में तो आई थी, सुनना जरा समझ में क्या कहना चाहता हूँ, एक दफे मेरे दिमाग में तो आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तू बड़ी पार्टी बन गया है, और मैं तो अपन तो अपनी दोस्ती तो ऐसी है जो श्री कृष्ण और सुदामा की थी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, तेरे से कहता ही नहीं था, तू क्या सोचेगा, क्या समझ में आया ना? इसलिए मैंने हिम्मत नहीं की क्या? इसलिए मैंने तेरे से ये कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज तेरे मुख से ये बात सुनकर मेरे हृदय के दरवाजे खुल गए कि ये मेरे लड़के के बारे में भी सोच सकता, मैं तो सोचता ही नहीं था। क्यों? ऐसी कोई असंभव बातें नहीं है, कहाँ खोजने जाना है, सब नक्की सुनिश्चित है अनंत भक्त पहले से, है ना? लेकिन अड़ोस पड़ोस में ही होते हैं, सारी दुनिया के हम चक्कर काटते हैं, बस इतना सा विकल्प आगे एक शब्द बोल तो देता, वो लड़की वाला लड़के वाला लड़का वाला लड़की वाले से बोल तो देता कि तेरी लड़की मेरे लड़के के लायक है, कहीं हो जाए तो न मालूम क्या सोचेगा, न मालूम क्या बोलेगा। क्यों? ये न मालूम को एक तरफ छोड़ के भगवान आत्मा का अनुभव सिर्फ इतना दूर है। मैंने कल आपको कहा था, क्या कहा था, कि एक कप चाय का प्याला पीना बहुत कठिन है, क्योंकि वो पराधीन है, और अपने आत्मा का दर्शन ज्ञान ध्यान शारीर है, क्योंकि वो अपराधीन नहीं है, पूर्णतः स्वाधीन है। ये लिखा है समय सारणी, इस सत्र में सारणी गाथा में लिखा है, सोलहवीं गाथा में ये लिखा है। इतना मुझे शुरू किया था, मुझे अंदाजा नहीं है, भूल गया हूँ। ठीक हो गया, हो गया, 5 मिनट बाकी है, ठीक है। ये सम्यक दर्शन कितना सरल है, सम्यक ज्ञान, अकेला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चरित्र भी, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, पूरे बाद में होते हैं अलग अलग, लेकिन उत्पन्न एक साथ होते हैं, ख्याल में आ गया यहाँ। तो एक सेकंड में ना तो आत्मा को जानना है, परिचय तो पूरा का पूरा है, जानने में तो आ रहा है, सिर्फ ये जानना है कि ये मैं हूं, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। दुर्गा जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में अद्भुत नित्या दर्शन का स्वरूप बताते हुए एक बहुत मार्मिक बात लिखी 70वां पेज पर नीचे से 5वीं पंक्ति मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्या लिखा कि भैया देह में एकत्व बुद्धि का नाम मिथ्या दर्शन है, अजीत मिथ्या दर्शन। तो बेचारे क्या जाने, निगो जी अजीत को है क्या नहीं, वो एक इंद्री जीव को है क्या नहीं, वो उसमें एकत्व बुद्धि है क्या नहीं है, क्या है उसमें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, उसका काम है किसी को अपना माने ही माने, और मानेगा तो उन्हीं में से जिनको जानेगा। तो सबसे नजदीक का पर पदार्थ शरीर है, और वो उसके ज्ञान का गेय बनता है, इसलिए उसी में अपनापन कर लेता है, इसलिए मिथ्या दर्शन है। अब देखिए जरा, एक गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया है, समझे ना, अब बछड़ा भूखा है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसे, और मुंह में दांत नहीं है, इसलिए कोई कठोर पदार्थ वो खा नहीं सकता, ने? लेकिन उसे एक पता है, किसने बताया उसे, यही आस पास खाने पीने का इंतजाम है, और कैसा इंतजाम है कि जिसे चबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दांत नहीं है, और इन्फेक्शन वाला नहीं है, बहुत बढ़िया पैकिंग में एकदम बढ़िया माल, यही आसपास कहीं है। क्यों, किसने बताया इसे, वो जानता है कि नहीं जानता है, यदि नहीं जानता होता तो उसका प्रमाण क्या है, जब वो अपनी माँ के स्तनों में जाकर के अपने आप पहुंच जाता है कि नहीं, और माँ के दूध पीने लगता है कि नहीं, ये ज्ञान उसे कहां से था, किसने बताया था? ये तो सिर्फ माँ के पेट में से ये ज्ञान था ना। अगर सुनना कि वहीं पर जब पैदा हुआ तो 10 गायें खड़ी थी, अब वो बच्चा जानता है कि इनमें से कोई एक मेरी माँ है, और उसमें ऐसे स्तन हैं, खन हैं, और उनमें दूध भरा है, और मैं उन्हें पीऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, इतना ज्ञान उसको जन्म से है, अपन सोच भी नहीं सकते हैं। अब उसकी एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों को हल करनी है, कैसी मिली, तो क्या है कि उसने अपनी माँ को जन्म से पहले कभी देखा नहीं है, तो ये 10 गांवों में मेरी कौन माँ है ये कैसे जाने, वो ये समस्या आपको हल करनी है, बाकी तो सब काम उसके पास अंदर से तैयार है। तो इतना पता चल जाए कि इनमें मेरी माँ कौन है तो उसका काम हो जाएगा, तो कौन समझा उसे, तो वो क्या देखता है कि वे 10 गायें खड़ी हैं, उसका सारा शरीर बहुत गंदा है, तो जो गाय उसके शरीर को चाट कर उसको साफ करने लगती है वो समझ जाता है मेरी माँ, क्योंकि इन 10 में कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये मेरी गंदगी साफ कर रही है अपनी जबान से, दूसरों की गंदगी को अपनी जबान से साफ करना, क्यों हाथ से साफ करने में हमको कितनी गिलानी होती है बोलो, तो वो समझ गया ये मेरी माँ है, 9 में हे बुद्धि हो गई ना, इतना भेद विज्ञान हो गया, ये मेरी माँ है, अब वो इस चार पैर दिखते हैं, इन पैरों के पास कहीं मेरा इंतजाम है इतना वो जानता है, तो वो कोशिश करता है तो पिछले पैरों की जगह अगले पैरों में बीच में मोह मानने लगता है। तो घर का मालिक ये कोशिश करता है कि उसे मैं समझाऊं, उसे पकड़कर और पीछे के पैरों के नीचे स्तनों की तरफ ले जाना चाहता है, सुनना। तो बछड़ा भी विरोध करता है और उसकी मां भी विरोध करती है, उसे मारने को दौड़ती है, तुम्हारे सहयोग की जरूरत हमें नहीं है, हटा हमसे। क्यों? मां भी जानती है कि ये बेटा अपने आप खोज लेगा, मुझे इसमें सहयोग करने की जरूरत नहीं है, आगे मां मार रहा है, नहीं मिलेगा तो पीछे पहुंच जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, दो मिनट बाद सही। बता के नहीं बता, आपने कभी देखा है? मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ भी थी बुंदेलखंड में, मैंने सब देखा है अपनी आंखों के सामने। क्या मां भी जानती है और बेटा भी जानता है, और वो पहुंच जाता है और अमृत का पान वो कर लेता है। तेरी आत्मा में ये ताकत है, सब जानता है तू, वो भगवान आत्मा तेरा जाना हुआ है, रोजाना जानने में आ रहा है, और तेरी ज्ञान पर्याय में भी वो ताकत है। जरा ढीली तो छोड़, तूने यहाँ लगा रखी, वहां लगा रखी, यहाँ लगा रखी, धवाधम धवाधम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, एक सेकंड की तो फुर्सत नहीं तेरे को, जरा ढीली छोड़ दो। गोविंदा जी, एक समय को ज्ञान पर्याय को तुम ढीली छोड़ दे तो बछड़े को छोड़ दे, तुम रस्सी से मत बांधो तो अपने मां के स्तनों तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? तुम उपयोग को ढीला तो छोड़ कि भगवान वो आत्मा को समझना है, मैं पढ़ के आऊं पहले समय साल की अठारहवीं गाथा के पद में, कोई कोई गाथा माता नहीं, चिड़िया को समय दर्शन होता है तो कौन सी गाथा पढ़ती होगी, लाखों मछलियां पड़ी है समूह रमन समुद्र में, पंचम गुण स्थान बढ़ती, कैसे होता है उन्हें समय दर्शन? बोलो, पहले भव से लेके आते होंगे, पागल हो गए हो, समय दृष्टि मर गए, तुरंत गति में जाता ही नहीं, बाहर में भव आता कि नहीं, तुरंत गति में नहीं जाता ना, वे तुरंत है क्या नहीं है, तो जन्म से पैदा नहीं हुआ था, उस मछली की पर्याय में उन्होंने समय दर्शन पैदा किया है, वो वृत्त लिए हैं, कौन सा पंडित वहां समझाने वाला? वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज गोपाल के ध्यान में आ रहा था, तो इतनी सी दूरी थी, इतना सा करंट में इतनी सी दूरी थी, और वो करंट दूर हुआ और काम खत्म। एक बहुत बड़ा कारखाना था, चलता था, हजारों गज कपड़ा रोजीना तैयार हो जाता था, अब बिगड़ गया, अब मशीनें बंद हो गई, छह महीना तक बंद रही, बहुत कोशिश करी लेकिन चलती नहीं है। तो वो जो मंगाया था ना सारी मशीनें रशिया से, करीब रशिया के इंजीनियर को बुलाओ और वो ठीक करेगा, तो उसने कहा आने जाने का किराया आपको देना पड़ेगा, वो तो देने ही नहीं, और उसे बुलाया, बुला करके उसने देख दाख करके एक छोटा सा हथौड़ा लेके एक जगह इतनी चोट मारी, वो सारा कारखाना चल गया, गजब हो गया, मैंने 3 लाख रुपए का बिल क्या दिया, कारखाना सुधारने का बिल क्या 3 लाख रुपए, ये गजब हो गया, इतनी सी चोट मारने का 3 लाख, क्यों इतनी सी चोट मारने का 3 लाख? सेठ जी बोले मैं तो नहीं दूंगा, कि सेठ जी देना पड़ेंगे किराया भी, वो ये 3 लाख इतनी सी चोट मारने का नहीं है, कहां मारना इसका है और कहां मारना इसका भी नहीं है, ये कहां मारना ये मैंने 8 बरस की उम्र से लेकर 72 वर्ष की उम्र तक दिन रात उसी में लगा दिया है, जो अध्ययन किया है ना उसका, उसका कीड़ा बन गया हूं, तब मैंने ये निकाल पाया कि यहां मारना, तो ये मेरी 72 वर्ष की तपस्या उसके 3 लाख हैं, बोल समझ में आ गया, देना देना क्या नहीं देना बोलो, ये इस त्रिकाली रूप भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप अंदर में विराजमान है। क्यों? और तुम बैठ गए, दो दो कुर्सियां लगा गए इतने ऊंचे, और हम सबको नीचे बैठा दिया, और घंटे भर से जमे हो। पांच पांच मिनट को हम वहां बैठते हैं तो 25-25 लाख लगते हैं, और गुजरात में जाके लोगे तो करोड़ों में लगेंगे। क्यों? हम एक बात पढ़ के बोलते हैं उसके 25 लाख, और तुम खोके जा रहे हो एक घंटे से। क्यों? बोलो। अरे भाई, ये इसके नहीं है, ये दो कुर्सियों पर बैठना, ये 8 वर्ष से लेकर 72 वर्ष की उम्र का जीवन इसी में लगाया है, तो ठोकर कहाँ मारना? वो त्रिकाली स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप जो भगवान, उसमें अपना वो पॉइंट बताना इसके लिए है। ये तो दो ही है, क्या है, दो होती है, जब तो केवल ज्ञान होगा तो किससे उम्र घटेंगे? मेरे कहने का मतलब, देशना लगती बहुत ज्यादा महान नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, ख्याल में है ना, पर इतनी सी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है। बस ये मैं हूं, इतना सा भान नहीं होने से अनंत दुख अनंत काल से ये जीव भोग रहा है, और इतना पता लगते ही मामला सब खत्म। कल तक 6 महीने से घाटे में जा रहा था कारखाना, दिवालिया निकलने की कगार पे था, और आज कल निकला तो दिन दूना रात चौगना बढ़ के एक कारखाने के 3 कारखाने खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे, बोलो। इसलिए कहते भाई, तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं को जानते हो, तुम्हारे जानने में आ रहा है, एक दफे अंदर में जाके देखो, और तुम्हारी दृष्टि में वो आ जाए तो तुम निहाल हो जाओ, सभी लोग निहाल हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।